प्रिय मित्रों नमस्कार। एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस afeis.com की डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज 20 जनवरी 2016 है और आज के लाइफ मैनेजमेंट की शुरुआत मैं अपने कल की बात को आगे बढ़ाते हुए ही करना चाहूंगा। और कल की बात यह थी मित्रों, मैंने आप लोगों को एक छोटा सा काम दिया था जो आपसे ही जुड़ा हुआ काम था और मैंने खासकर भास्कर में जो आप लोगों ने मेरा लेख पढ़ा और उसके बारे में जो प्रतिक्रियाएं भेजी थी उसको आधार बना करके कहा था कि अगर प्रतिक्रिया भेजने में कोई देरी हुई है तो उस देरी के कारणों की तलाश करें, और जिन्होंने प्रतिक्रियाएं नहीं भी भेजी हैं या जिन्होंने वक्त पर भी भेज दी हैं उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इस मामले में वो सही हो सकते हैं, लेकिन और भी दूसरे बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिन मामलों में हम ऐसा करने से चूक जाते हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों ने उस पर जरूर कुछ ना कुछ काम किया होगा, और मैं ये भी जानता हूं कि जो काम करने वालों का प्रतिशत हो है वो मुश्किल से 1-2% होगा, ज्यादातर इसे नहीं कर पाते हैं। और सच पूछिए तो वही 1-2% लोग होते हैं जो समाज में दूसरों की तुलना में आगे भी निकल जाते हैं। मित्रों, खासकर मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि जो फरवरी का बैच है वो पूरा हो चुका है और मुझे मालूम है कि जैसे जैसे क्लासेस लगने के दिन नजदीक आते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे उनको लगेगा कि अब उन्हें भोपाल के लिए प्रस्थान करना है, वैसे वैसे उनके दिमाग में एक बहुत विचित्र किस्म के थॉट्स आने शुरू होंगे, कई कई तरह के विचार आने शुरू होंगे। आप लोग इसको अनुभव कीजिएगा। वो विचार कुछ इस तरीके के होंगे कि अरे यार चलो क्या फायदा होगा जाने से, अरे यार कौन अपने 15 दिन खराब करे, अरे नेक्स्ट बैच में चले जाएंगे, अरे क्या सच में बिना 15 दिन के हम सिविल सर्विस क्वालिफाई ही नहीं कर सकते, तबीयत भी ठीक नहीं है, घर में बाबूजी अम्मा जी भी कह रही हैं कि बेटे मत जाओ, 10 दोस्त हैं यहां वो छूट जाएंगे, मेरी अभी जो तैयारी चल रही है वो बेकार के डिस्टर्ब होगी, चलो मेरा दोस्त जा रहा है क्या क्या हुआ उससे पूछ लेंगे, उससे काम चल जाएगा, रिजर्वेशन भी नहीं मिला है, कौन धक्के खाते हुए जाए, जरा खुद की तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। दोस्तों, इस तरह के ना जाने कितने सारे विचार दिमाग में आएंगे, लेकिन एक चीज आप मार्क कीजिएगा, और यह मैं एक फिर से एक इवेंट ले रहा हूं और इस इवेंट के माध्यम से आप दूसरे इवेंट्स का भी मूल्यांकन कर सकते हैं, यहां तक कि भास्कर का भी मूल्यांकन कर सकते हैं और दूसरे जो आपके साथ घटनाएं घटी हैं इस तरह की उनका भी मूल्यांकन कर सकते हैं। एक बात आप मार्क कीजिए फ्रेंड्स जो मैं समझता हूं कि लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है कि शायद कहीं सबसे ज्यादा जरूरी तो नहीं है, और यह किस तरह से जरूरी है, किस तरह से ये चीजें काम करती हैं, कैसे कैसे छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी चीजें छुपी हुई होती हैं, जैसे कि अणु में ब्रह्मांड छिपा होता है, इस पर मैं आपको अलग से एक ऑडियो फॉर एक्सीलेंस प्रोवाइड करूंगा, अलग से करूंगा, तब आप देखेंगे कि आपकी दृष्टि और कितनी बारीक होती चली जाएगी, आप महीन दृष्टि वाले होते चले जाएंगे, और जो जितना महीन होता चला जाता है उतना सुपरफाइन होता चला जाता है। मैंने कही कि इस तरह के जो थॉट्स आएंगे वो किस तरह के मस्तिष्क में आएंगे, बहुत स्पष्ट है, चट्टानों में घुन नहीं लगा करते क्योंकि चट्टानों में घुन के घुसने की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन लकड़ियों में लग जाते हैं क्योंकि लकड़ियां पोली होती हैं और जरा सा भी जगह मिला नहीं कि एक घुन घुसा और फिर वो अपने तरह के लाखों घुन वहां प्रोड्यूस करेगा और लकड़ी को खोखला कर देगा। मित्रों, जिन्होंने ठान लिया है कि मुझे तो जाना ही है, उनके दिमाग में कभी भी इस तरह के थॉट्स नहीं आएंगे, और यदि आएंगे भी कभी कभार आ जाते हैं। देखिए, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और हमें यह मानकर चलना चाहिए कि इस तरह की उतार चढ़ाव हमारे मस्तिष्क में आते ही रहते हैं। हां, अब वो उतार चढ़ाव सामान्य सी उठने वाली तरंगों की तरह है या ज्वार भाटा की तरह है या सुनामी की लहरों की तरह है, यह बात अलग है, लेकिन उतार चढ़ाव तो दिमाग में आते ही हैं। जिनका फैसला बिल्कुल दृढ़ है कि नहीं मुझे तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए जाना ही है, उनके दिमाग में इस तरह के थॉट्स, जिनके आप निगेटिव थॉट्स कह सकते हैं, ऐसे थॉट्स जो आपकी एनर्जी को कम करते हैं, ऐसे थॉट्स जो आपके संकल्प को कमजोर बनाते हैं, ऐसे थॉट्स जो आपको सफलता से विमुख करके असफलता की ओर ले जाते हैं, ऐसे थॉट्स जो आपके एनर्जी लेवल को कमजोर करके और आपको वीक बना देते हैं, उनमें आते हैं जिनके संकल्प में कमजोरी होती है, जो फैसला लेने के मामले में थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ देते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं कि ठीक है देखेंगे। बस केवल आपको अपने दिमाग को यह इंस्ट्रक्शन देना है कि ठीक है देखेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश क्यों करना? आप कोशिश करेंगे से पहले आप एक ठोस फैसला कीजिए, अगर जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, खत्म हो गई बात। और इसके बाद फिर जितने भी थॉट्स हैं उनको इस बात का इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, इस बात के संकेत दे दीजिए कि मेरा यह फैसला है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, बात खत्म हो गई। लेकिन मित्रों ऐसा होता नहीं है। आप देखिए, आप एक काम करने की सोचते हैं, आपको लगता है कि आपके लिए यह काम बहुत उपयोगी है, बहुत जरूरी भी है, बहुत फायदेमंद है, लेकिन आप सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद कर लेंगे। मैंने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी, फिर वो थोड़ी देर बाद कभी नहीं आता, क्योंकि कामों का सिलसिला तो लगातार जारी रहता है। और सच पूछिए मित्रों कि वो जो व्यक्ति है या वो जो दिमाग है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो एक साउंड है जो हमारे कानों में सुनाई देती है, हमारे दिमाग में घुसकर जो बोलता है, वो बेसिकली बड़े आलसी किस्म का जीव होता है, बहुत ही अलाल किस्म का प्राणी होता है, या कह लीजिए कि उसी को आप कह सकते हैं कि वो शैतान होता है। शैतान मान लीजिए, शैतान का काम ही होता है कि वह आपको सही रास्ते से भटकाकर गलत रास्ते पर डाल देता है, गलत रास्ते की ओर प्रेरित करता है। शैतान उसी को कहा जाता है। शैतान का मतलब कोई भूत प्रेत नहीं है, और अगर भूत प्रेत भी है तो कोई भूत प्रेत हमारा सगा संबंधी नहीं होता है कि हमारे हित की सोचेगा, वो हमारी बुराई की ही सोचेगा। तो वो शैतान बैठा रहता है, उसका काम ही उल्टे काम कराना है। वो एक्टिवेट हो जाता है, वो उत्तेजित हो जाता है, वो सक्रिय हो जाता है, और फिर वो बहुत अच्छे से जानता है कि किसी भी आदमी के दिमाग को किस तरीके से गलत कामों के लिए कन्विंस किया जा सकता है, वो बहुत अच्छे से जानता है। पितरों, एक छोटा सा उदाहरण है, आप सब इस उदाहरण से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, और वो उदाहरण है कैकेयी के द्वारा मांगे गए दो वरदान, और कैकेयी और मंथरा का संवाद। रामचरितमानस को पढ़ करके देखिए, आप धार्मिक ग्रंथ छोड़िए, आप एक साहित्य के तौर पर पढ़ करके देखिए, साहित्य तो है ही ना, महानतम साहित्य में है दुनिया के, कि किस कैकेयी राम को कितना प्यार करती थी, और मंथरा अब सिखा रही है कि राम को राजगद्दी दी जा रही है, कभी तुमने सोचा है कौशल्या राजमाता बन जाएंगी और भरत जिंदगी भर सेकेंडरी था या सेकेंड या थर्ड पोजिशन पर रहेंगे, वो कभी राजा बन ही नहीं पाएंगे। आप उस प्रसंग को पढ़कर देखिए, वो कैकेयी और मंथरा का ही संवाद नहीं है। वो सच पूछे तो हमारा और अपने जो हमारे दिमाग में जो शैतान बैठा हुआ है उसके साथ किया गया हमारा संवाद है कि कैकेयी मंथरा का कितना प्रतिवाद करती हैं। वैसा नहीं कि मंथरा ने एक बार कह दिया और कैकेयी ने सुन लिया और मान लिया, ऐसा नहीं होता। उसको ध्यान से पढ़ करके देखिए, जैसा मैंने कहा कि ध्यान से पढ़ने से चीजों के अर्थ बदल जाते हैं, और महसूस करने के बाद तो वो अद्भुत ही वो उठते। कैकेयी प्रतिवाद करती है, प्रतिरोध करती है, लेकिन मंथरा आखिरी में एक बड़ा खूबसूरत वाक्य कहती है, और उस वाक्य ने कैकेयी के दिमाग में ऐसी हलचल पैदा की कि सब कुछ उलट जाता है। मंथरा ने कहा था, को नृप होए हमें कहानी, चेरी छाणी न होई बरानी, कि हे कैकेयी, हे माता, कोई राजा बने हमें क्या फर्क पड़ता है, को नृप होए हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई राजा बने हमें कहानी, हमें ना नुकसान होना है और ना फायदा होना है। क्यों? क्योंकि हम तो चेरी हैं, दासी हैं, और दासी ही बनेंगे, रानी तो बनने से रहे, तो राम बने या भरत बने हमें क्या करना है, आपको जो ठीक लगे करो, ये कह दिया। अब कैकेयी सोचने लगे कि हाँ यार, ये तो सही कह रही है, इस बिचारी का क्या फायदा, ये तो जो भी बात कह रही है वो मेरे ही हित में कह रही है। और वहां से कैकेयी का दिमाग उलट जाता है, यानी कि वो जो शैतान है वो प्रबल हो उठता है, या कह लीजिए कि शैतान जीत जाता है। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि ये केवल कैकेयी और मंथरा का संवाद नहीं है, ये बेसिकली मानव का स्वयं से किया गया संवाद है। हम भी अक्सर ज्यादातर मामलों में यही करते हैं। हम बहुत प्यार कर रहे हैं, अपने उद्देश्य को बहुत प्यार करते हैं या अपने लोगों को बहुत प्यार कर रहे हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को, पिता बेटे को, बेटा पिता को, मां बेटी को, बहू को, सबको, हमारे जो अपने लोग हैं उन्हें हम सब बहुत प्यार कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे दिमाग में जो शैतान बैठा हुआ है वो हमें उसके खिलाफ ले जाकर वहां से विमुख कर देता है। दोस्तों, यहां जो हमारी सबसे बड़ी जो ताकत होती है, याद रखिए, वो होता है हमारा संकल्प, हमारी संपूर्णता। संकल्प की जगह मैं इसे संपूर्णता कहना चाहूंगा। और संकल्प, सच पूछे तो, अपने आप में संपूर्णता का ही नाम होता है कि आपने जो फैसला किया है उसमें कितनी संपूर्णता है, कंप्लीटनेस कितनी है, उसमें सॉलिडनेस कितनी है, वो ठोस कितना है, पिलपिला तो नहीं है। आपको मालूम है कि जब फल कच्चा रहता है या थोड़ा सा पका हुआ भी, लेकिन जब ठोस रहता है तब उसमें कीड़े नहीं लगते। अगर फल पिलपिला हुआ नहीं कि कीड़े लगने शुरू हुए, और एक कीड़ा लगा नहीं कि फल पूरा सड़ जाता है। क्या हमारे दिमाग के साथ ऐसा नहीं होता? हमारे विचारों के साथ ऐसा नहीं होता? हमारे व्यक्तित्व के साथ ऐसा नहीं होता? हमारे उद्देश्यों के साथ ऐसा नहीं होता? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और जो इसके रहस्य को समझ लेते हैं, इसके विज्ञान को समझ लेते हैं, वो अपने साथ ऐसा होने नहीं देते। होता तो उनके साथ भी है, लेकिन वो अलाउ नहीं करते, वो बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं। वो रेड लाइट को पहचानते हैं कि अरे अब रेड लाइट हो गई है, अब सड़क पार करना खतरनाक होगा, रुक जाओ, और ग्रीन लाइट की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उनको अपनी यात्राएं पूरी करनी है और पूरी सुरक्षा के साथ पूरी करनी है। तो मित्रों, ये जो अलर्टनेस है, ये जो अपने दिमाग में बैठे हुए एक ऐसे शैतान की पहचान करने की जो बात है, जो कहीं ना कहीं हम खुद हैं, मुझे लगता है कि लाइफ मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा मायने रखती है। और मैं जिस लाइफ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, उसका संबंध केवल सिविल सर्विस की तैयारी से नहीं है, केवल किसी नौकरी के लिए या किसी व्यापार में सफलता प्राप्त करने से भी नहीं है, बल्कि कंप्लीट लाइफ से है। क्योंकि जीवन की जो गुणवत्ता है, जीवन की जो विराटता है, जो विशालता है, उसके सामने तो ये सारी छोटी 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 चीजें होती हैं। एक फूल कभी भी माला नहीं कहलाती, लेकिन माला भी कई फूलों के संयोग से ही बनती है। हमारा जीवन भी इसी तरह से है, जब छोटी छोटी घटनाओं से हमारा जीवन रूप लेता है, आकार ग्रहण करता है, और उस समय वो घटनाएं बड़ी छोटी लगती हैं, वो विचार बड़े छोटे लगते हैं, वो उद्देश्य बड़े छोटे लगते हैं, यहां तक कि हमारे वो कर्म भी छोटे लगते हैं। लेकिन इकट्ठे होने के बाद, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद, हम जो कुछ भी बनते हैं, जो कुछ भी हमारी पहचान होती है, जो कुछ भी हम कहलाते हैं, वो वही होता है जो इन छोटे छोटे के संकलन से हमारे पास इकट्ठा हुआ है। इसलिए मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप जीवन में बड़ा बड़े उद्देश्य बनाएं, अच्छी बात है, लेकिन उस बड़े उद्देश्य को पाने के लिए आपको ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, जो दिमाग में बैठे हुए शैतान को पहचान करने का जो उपाय है, इसकी कभी भी अनदेखी करनी नहीं चाहिए। मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। फ्रेंड्स, कल के AIR न्यूज में कुछ बहुत अधिक चर्चा करने के लिए नहीं है, एक दो खबरें ऐसी हैं जिनको लेकर के हम थोड़ी बहुत बातें कर सकते हैं, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर थी वो खासकर पूर्वोत्तर के विकास के मामले को लेकर के, प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे, आपको मालूम है कि इससे पहले वो सिक्किम गए, वहां ऑर्गेनिक स्टेट जो घोषित किया गया, कल उनके बारे में हमने चर्चा की थी, और फिर वो असम गए और वहां उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए उसको लेकर के मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। पहली बात मित्रों, जो सिविल सर्विस के लिहाज से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दो बातें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी। पहला तो ये, उन्होंने एक्ट ईस्ट की बात कही, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, एक तो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, तो वो हमारे फॉरेन अफेयर्स में चलती है। गुजराल साहब ने लुक एट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की थी, मतलब पूर्वी पड़ोसी देशों को देखो, पूर्व की ओर देखो, मतलब जो हमारे छोटे छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं उनकी तरफ हम ध्यान देना चाहिए, उनसे अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहिए। और फिर जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने तो फिर पड़ोसी और आसपास के जो छोटे छोटे हमारे जो देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने को बिल्कुल प्राथमिकता ही दे दी, यानी कि उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया, वो फॉरेन अफेयर्स का हिस्सा है। लेकिन यहां उन्होंने जिस एक्ट ईस्ट की बात कही है उसमें स्पष्ट रूप से न्यूज में आपने सुना है कि वो पूर्वी इलाके हैं, डिटेल्स भी थी, अगर आपने ध्यान दिया हो न्यूज में तो उन्होंने डिटेल्स भी कुछ दी हैं कि जब पूर्वी इलाके की बात करते हैं तो वो पूर्वी इलाके कौन से हैं। आपने ध्यान दिया होगा पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल का नाम लिया, फिर उन्होंने बिहार का भी नाम लिया, इसके बाद फिर वो नॉर्थ ईस्ट पर आ गए, सारे स्टेट का इनका अलग अलग स्टेट का नाम नहीं लिया, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की बात कही, यानी कि पूरा का पूरा जो पूर्वी भारत है और साथ ही साथ जो उत्तर पूर्वी भारत है इनके विकास की बात उन्होंने कही है। जब उन्होंने विकास की बात कही है तो अब आप देखिए कि फिर अब इन क्षेत्रों का विकास हो कैसे। मित्रों, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से आप देखेंगे कि लगातार कुछ न कुछ समय के बाद हमेशा पूर्वी क्षेत्रों के विकास की बात बिल्कुल मेन स्ट्रीम में आ जाती है। पूर्वी क्षेत्रों को मुझे ऐसा लगता है, खासकर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के बारे में, कि अभी की सरकार का काफी जोर है। अब सवाल यह है कि ये जो हमारे देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के एरिया इलाके हैं ये विकसित कैसे हों, कैसे इनको डेवलप किया जाए। उसमें उन्होंने एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही वो केवल उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए ही नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए है। मित्रों, मैं आपका विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये इकोनॉमिक का भी इकोनॉमिक्स का भी आपका हिस्सा बनता है और ये ज्योग्राफी का भी हिस्सा बनता है। वो ये कि भारत में कुछ ऐसी एक बड़ी विचित्र सी स्थिति हुई है, कैसे पॉलिसी बनी, क्या पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप किया गया, कैसी लीडरशिप हमारे राज्यों को मिली या केंद्र को मिली, कि जहां जहां हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, और अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र ही सबसे पिछड़े हुए हैं, सबसे कम विकसित हुए हैं। बल्कि यहां तक कि मान लीजिए कि एक बड़ा राज्य है, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश को ले लीजिए या बिहार को ले लीजिए, मैं पुराने मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, या मैं बिहार के तब की बात कर रहा हूं जब वो उत्तराखंड नहीं बना था, ये आपके सॉरी झारखंड नहीं बना था, उस समय ये जो राज्यों के जो विभाजन हुए हैं या जो डिमांड की गई कि हम अलग होंगे, हालांकि ठीक है मध्य प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग ने उतना जोर नहीं पकड़ा था, तो उसमें जो मुख्य बात होती थी वो यही होती थी कि हम नेचुरल रिसोर्सेज से इतने भरपूर हैं लेकिन हम सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, हम सबसे ज्यादा गरीब हैं। उधर के वहां के लोगों का पूरा का पूरा आप डाटा देख लीजिए, एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में वो बहुत पीछे हैं, उनकी जो इनकम है आर्थिक दृष्टि से वो उनकी बहुत पिछड़ी हुई है, हेल्थ के अगर आप इंडेक्स देखते हैं तो उसमें वो बहुत पिछड़े हुए हैं, और पता लगा कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं। सीधी सी बात है कि जो प्राकृतिक संसाधन तो वहां थे उसका एक्सप्लॉइटेशन किया गया, ऐसा नहीं कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं किया गया, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया गया लेकिन उसकी कीमत पर दूसरे क्षेत्रों को विकसित किया गया, उन क्षेत्रों को विकसित नहीं किया गया, और यह एक बहुत बड़ा कारण रहा कि छोटे छोटे राज्यों की मांग की जाने लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि यदि इन प्राकृतिक संसाधनों पर हमारे ही अपनी लीडरशिप हो गई तो फिर हम अपने क्षेत्रों का विकास कर सकेंगे। और सच पूछिए तो जब इन राज्यों के विभाजन कर दिए गए तब ये चीज प्रमाणित भी हो गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मामले में आप देखें कि छत्तीसगढ़ की बहुत ही फास्ट ग्रोइंग, इसके बाद से 2000 के बाद से जब से छत्तीसगढ़ बना है बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, झारखंड के साथ भी यही है, वो आंकड़े बता रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के साथ भी लगभग लगभग यही रहा है, और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कट कहा भी, देखा आपने कि असम में, असम की बात वो कर रहे थे कि असम में 15 साल से एक ही पार्टी की सरकार है और 10 साल से असम ने प्रधानमंत्री दिया है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, यहां खासकर कॉन्स्टिट्यूशन में आपके काम आएगा कि मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे वे असम के में से ही आते थे राज्यसभा के सदस्य के रूप में, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, जबकि इंग्लैंड में स्थिति दूसरी है। इंग्लैंड में यह है कि वही प्रधानमंत्री के लिए जरूरी है कि वो लोअर हाउस का मेंबर हो, लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होना जरूरी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर से बात नहीं बनती है। लेकिन हमारे यहां जो स्थिति है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, मतलब बहुमत दल के नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा, और उसे बहुत जरूरी है कि या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, ये कंपलसरी है। मतलब राज्यसभा का सदस्य होने पर भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये हमारे यहां प्रोविजन है। तो ये उन्होंने बात कही। पूरे के पूरे आप नॉर्थ ईस्ट को देखिए तो नॉर्थ ईस्ट नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है, मतलब आप समझ लीजिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज तो है ही है, वहां पानी बहुत है जिससे आप हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। पूरे के पूरे हिमाचल में जो एक तरह से हिमाचल और उत्तराखंड में जो एक आर्थिक रिसोर्सेज की जो बात की जाती है वो जल विद्युत को ही लेकर के बात की जाती है। और भी दूसरी बहुत चीजें हैं, ऑर्गेनिक खेती हो सकती है, फूलों की खेती हो सकती है, और भी बहुत सी चीजें हैं, जड़ी बूटियां हैं। नॉर्थ ईस्ट इन सबसे भरा हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में अभी भी नॉर्थ ईस्ट उतना आगे नहीं बढ़ पाया है। और ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाने के दूसरे बहुत से कारण हैं। वहां अपनी जो इंसर्जेंसी चलती रहती है, मतलब कुछ ऐसे संगठन सक्रिय हैं जो हिंसा में लगे रहते हैं, डेवलप नहीं होने देते हैं, वो एक अलग कारण है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि वहां जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका पूरी तरह से हम भरपूर दोहन नहीं कर पाए हैं, जिसकी ओर प्राइम मिनिस्टर ने ध्यान दिलाया है। दोस्तों, मेरे पास अक्सर मेल आते रहते हैं और मैंने अभी वो सिस्टम शुरू नहीं किया है। अभी कल या परसों ही मुझे एक स्टूडेंट्स का मेल मिला था जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर, जिस तरह से आप एक वीकली क्वेश्चन देते हैं जनरल स्टडीज का, ठीक उसी तरह से एसे के लिए भी एक टॉपिक दे दें कि ताकि हम लोग उस पर एसे लिख सकें। मैंने अभी इस पर विचार नहीं किया, लेकिन वो मेरे जेहन में जरूर है। तो कल के न्यूज में आपने एक सेंटेंस सुना होगा, मुझे लगता है कि उस पर अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। और कभी कभी मित्रों ऐसे पकड़े भी वहीं से जाते हैं, क्योंकि जिनको पेपर सेलेक्ट करना होता है उनका ध्यान इन सारी बातों पर होता है। वो देखते रहते हैं क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या कहा जा रहा है, कहां से ऐसे के लिए सब्जेक्ट वो निकाल सकते हैं। न्यूज में आपने सुना होगा, खासकर जब पूर्वोत्तर के विकास पर ही की वो बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा था कि विकास ही समस्याओं का समाधान है। मतलब विकास में सभी समस्याओं का समाधान है। क्या इस पर ऐसे लिखा जा सकता है कि विकास में ही समस्याओं का समाधान है? एक बहुत अच्छा है, ऐसे का विषय हो सकता है, इस पर लिखिए, कोशिश कीजिए। लेकिन ऐसे कंटेंट, फुल ऑफ कंटेंट होना चाहिए, लैंग्वेज में रिदम होना चाहिए। जो तीनों बैच के स्टूडेंट रहे हैं उनको मैं ऐसे के बारे में बहुत डिटेल में बता भी चुका हूं, और दो दो तीन तीन स्पेशल ऑडियो भी उन प्रोवाइड किया जा चुका है। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो टाल मटोल मत कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको ऐसे लिखना चाहिए। इसमें मित्रों मैं आपको एक और भी बात आज कहना चाहूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल छपा है, और ये जो आर्टिकल है ये है बान की मून का, जो सेक्रेटरी, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव है अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के, बान की मून। इसका टाइटल है यूनाइट अगेंस्ट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, मतलब कि ये जो हिंसात्मक जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, हिंसात्मक जो अतिवादिता है उसके खिलाफ इकट्ठे होइए। इस पर इन्होंने, उनका अपना आर्टिकल है, और उन्होंने बताया है कि यूएन में उन्होंने पेश किया है जिसमें लगभग 70 रिकमेंडेशन दिए हैं, और उसको उन्होंने 5 भागों में डिवाइड करके इसमें बांटा है, ये आर्टिकल छपा है। उन्होंने 5 उपाय बताए हैं कि किस तरह से ये वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को रोका जा सकता है। इसे आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, मैंने इसे पूरा पढ़ा है और इसमें इसे अंडरलाइन भी किया है। और ऐसे स्टूडेंट जो इसको नहीं समझ पाएंगे, जिनकी अंग्रेजी काफी कमजोर हो, सामान्य भी अगर आपकी अंग्रेजी है तो बड़े आराम से समझ जाएंगे, और जिनकी बहुत कमजोर है तो उनसे मैं अर्ज करूंगा कि इस आर्टिकल को भले ही जो अंग्रेजी जानने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि न केवल ये आर्टिकल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके राइटर जो है ना महासचिव है यूएन के, बल्कि सही मायने में इसमें इन्होंने जिन मुद्दों को उठाया है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और जिस टॉपिक पर उठाया है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि पूरी की पूरी दुनिया किस तरह से आतंकवाद से पीड़ित है, पूरी की पूरी दुनिया में, कि सीरिया हो, लीबिया हो, पूरा मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और भी जो दूसरे देश हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से परेशान हैं। आपको यह भी मालूम है कि कुछ ही समय पहले अपने उद्बोधन में ओबामा साहब ने, जो उनके कार्यकाल का उस तरह का अंतिम वर्ष का उद्बोधन था, उसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में यहां सीधे आतंकवाद की बात नहीं है, ये उसको उन्होंने एक दूसरे रूप में लिया है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा जिन्होंने लिखा है वो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा जो रिकमेंडेशन दी गई है वो वर्ल्ड फोरम के लिए है, वो यूनाइटेड नेशन के लिए है। तो हर दुनिया का हर देश इस पर विचार करेगा, तो पूरी की पूरी दुनिया को संबोधित कर रहे हैं। इस लिहाज से ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से अर्ज करूंगा कि इस आर्टिकल को वो समझने की कोशिश करें, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें, और ज्यादा बेहतर होगा कि इस आर्टिकल को वो अपने स्टोर में भी रख लें, इसको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित भी रख लें, ताकि बीच बीच में पढ़ते रहें। मित्रों, इस आर्टिकल की जो सबसे बड़ी खासियत है, जो मैं भी निबंध के संदर्भ में जो बात कर रहा था, वो ये कि आप देखेंगे कि जब वो एक्सट्रीमिज्म, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट बात करते हैं कि इसका समाधान क्या है, तो आप देखेंगे कि वो सारे की सारी जो बातें हैं घूम फिरकर अलग अलग पॉइंट्स इसमें उन्होंने दिए हैं। रिकमेंडेशन तो 70 हैं, इसमें उन्होंने 5 मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, लेकिन वो सारा का सारा आपको 2-3 चीजों पर टिका हुआ मिलेगा। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, और सच पूछे तो पढ़ने की स्टाइल भी हमारी यही होनी चाहिए। पहला तो है डेवलपमेंट की बात उन्होंने कही है कि जब तक समाज में असमानता मौजूद रहेगी, फिर ये असमानता का आधार कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो पुरुष स्त्री की असमानता हो, चाहे धनी और गरीब की असमानता हो, जाति पर आधारित असमानता हो, या धर्म के आधार पर भेदभाव हो, जब तक ये एग्जिस्ट करेंगे तब तक इस तरह के एक्सट्रीमिज्म जो ग्रुप हैं वो पनपते रहेंगे। तो उन्होंने एक समाज में इस तरह के समानता स्थापित करने की बात कही है। समानता का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल दोनों सबको समान बना दिया जाए, लेकिन जो दूसरी पॉइंट उन्होंने लिया है, जो फिर समानता को अगर हम डिफाइन करेंगे, तो एक ह्यूमन डिग्निटी होती है, एक गरिमा होती है, उस गरिमा के तहत ही काम किए जाने चाहिए, और इसके लिए उन्होंने सभी को जिम्मेदार ठहराया, मतलब सभी से अपील की है, जिम्मेदार शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, उन्हें अपने विचारों में, आइडियोलॉजी में ज्यादा ठोस होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप जो प्रोवाइड की जाए वो ह्यूमन राइट्स के तहत हो, चाहे फिर इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे सिविल सोसाइटीज हो, चाहे जुडिशियल हो, वहां एक गुड गवर्नेंस की सिचुएशन आए, बहुत अच्छे तरीके से वो अपना काम करें, यहां तक कि जो आर्ट, म्यूजिक, कलाकार, सिनेमा, यूथ, स्पोर्ट्स, ये जितने भी इससे रिलेटेड संगठन हैं वो इस दिशा में मिलकर के अपने ढंग से काम करें, एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर हो, सभी को जॉब प्रोवाइड किए जाएं। इस तरीके से आप देखेंगे कि जितनी भी बातें इन्होंने उठाई हैं, चाहे वो रूल ऑफ लॉ हो, जो भी जितनी भी बातें उठाई हैं, वो सारी की सारी बातें कहीं न कहीं विकास और समानता से जुड़ी हुई बातें हैं। तो इस तरीके से जब आप विकास भी यही समस्याओं का समाधान है पर निबंध लिखेंगे, तो इसमें से आप बहुत सी चीजें वहां ले सकते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से तुरंत आपके निबंध में एक अलग तरीके की चमक आ जाएगी। तो मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, जहां तक AIR न्यूज की बात है, दो तीन छोटी छोटी खबरें और हैं, मैं उनका केवल एक इशारा उनकी तरफ इशारा कर देता हूं। एक तो अटल पेंशन योजना के बारे में बात थी कि उसका समय बढ़ा दिया गया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक है अटल पेंशन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये क्या है, किन लोगों के लिए है, इससे क्या फायदे होंगे, इसकी सीमाएं क्या हैं, ये आपका तैयार होना चाहिए। इसके बाद एक छोटी सी खबर थी कि चीन की वृद्धि दर पिछले कई सालों के बाद सबसे कम रही है, वो हम लोग लगातार बातें करते ही आ रहे हैं। पूरा विश्व में एक जो एक आर्थिक सुस्ती आई है, तो स्वाभाविक है कि चीन में भी वो आर्थिक सुस्ती आनी थी, और एक बात जो एक अच्छी बात थी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो भारत की विकास दर है उसके प्रति काफी संभावना व्यक्त की है, हालांकि दुनिया के बारे में उन्होंने अपने उसको घटाया है कि वृद्धि दर पिछले सालों की तुलना में कम रहेगी, लेकिन भारत के प्रति उनका काफी विश्वास व्यक्त हुआ है, एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों न्यूज में तो इतनी ही थी, जहां तक न्यूज़पेपर की बात है टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल मैंने आपको प्रोवाइड किया ही है, वो आप देख लेंगे। खासकर आपको मालूम है कि कल हम लोगों ने बात की थी एक जो अनफॉर्चुनेटली एक स्टूडेंट ने जो आत्महत्या की थी उसको लेकर के, मामला धीरे धीरे वो पॉलिटिकली होता जा रहा है, उसको लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट है, आप इसको देखेंगे। खासकर हमको उस पार्ट पर न जाकर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या हो रहे हैं, किस तरह से पॉलिटिक्स घुस रही है, उसको लेकर के कमेंट है, आप ये देखिएगा। दोस्तों एक टेनिस में खासकर जो फिक्सिंग की जो बात हो रही है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्रिकेट से गेम फिक्सिंग चल का मामला चला है, अब वो टेनिस के मामले में वो फिक्सिंग दिखाई दे रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको भी अपने एडिटोरियल कमेंट के लिए चुना है सब्जेक्ट को, इस पर आप देख लेंगे। एक गंगा के सफाई अभियान पर भरत झुनझुनवाला जी का लेख है, आप जानते हैं कि भरत झुनझुनवाला बहुत अच्छा लिखते हैं, ये लेख आप लोग जरूर पढ़िएगा, ये आपके दैनिक जागरण में छपा हुआ लेख है। और दोस्तों फसल बीमा योजना आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आर्टिकल्स आने शुरू हो गए हैं, तो राष्ट्रीय सहारा में एक आर्टिकल आया है और बिजनेस स्टैंडर्ड जो हिंदी का है उन्होंने इस पर एक एडिटोरियल कमेंट भी किया है, ये भी आर्टिकल मैं आपको नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड कर रहा हूं और इसके अतिरिक्त दो तीन और क्लिपिंग्स हैं वो सब आप लोग देख लेंगे। तो दोस्तों न्यूज़पेपर्स के बारे में इतना ही, अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। फ्रेंड्स एक दुखद खबर ये है कि हमारे यहाँ थर्ड बैच के स्टूडेंट हैं उज्ज्वल सिंह जो अररिया बिहार से हैं, उनका मेल आया है कि बाइक एक्सीडेंट में उन्होंने अपना भाई खो दिया है। सच में सुन ये खबर पाकर के उज्ज्वल हम सबको बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, आप में जो दर्द है जो पीड़ा है उसको हम समझा जा सकता है कि इस तरह की असामयिक अकाल मृत्यु, ऐसा दुख होता है, ऐसी खरोंच होती है जो शायद जिंदगी भर भुलाए नहीं भूलती। हम लोग सब बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और यह भी प्रार्थना करें कि वो आपको और आपके पूरे परिवारजनों को ऐसी शक्ति प्रदान करें कि आप लोग इस दुख को बर्दाश्त कर सकें। मित्रों यहां मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि उज्ज्वल ने ये बात लिखी है कि सर आप मेरे बिहाफ पर सभी श्रोताओं से ये कहें कि जब भी वो बाइक चलाएं बहुत सावधानी के साथ चलाएं, क्योंकि बाइक में ही मैंने अपने भाई को खोया है और वो दर्द कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं। बिल्कुल हम लोग समझ रहे हो उज्ज्वल, और आपने अपने इस नुकसान को दूसरों के फायदे के तौर पर एक संदेश देने की बात कही, ये आपकी बड़ी एक उदार भावना है, मैं इसका बहुत सम्मान करता हूं। और आपका जो मैसेज था वो सभी तक मैंने पहुंचा दिया है कि जो भी स्टूडेंट बाइक चला रहे हैं प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें, जीवन बहुत मूल्यवान है, छोटी सी गलती जिंदगी की इतनी बड़ी गलती बन जाती है कि फिर जिंदगी ही नहीं रह जाती। मित्रों बहुत से और मेल आए हैं, उनमें से कुछ के मैं नाम ले रहा हूं, तो जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और जो मैं नाम ले रहा हूं उसमें है सौरभ यादव कानपुर से, शैंकी कोटद्वारा उत्तराखंड से, प्रभात कुमार द्विवेदी, पंकज कुमार रांची से, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ से, सुनीता पाटीदार रतलाम से, रवि यादव लखनऊ से, अनिल और पुष्पा गुप्ता महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी मेल में जो सौरभ यादव कानपुर के हैं उनका मेल, उनके मेल को मैं आज प्राप्त सभी मेलों में से बेस्ट मेल घोषित करता हूं। सौरभ इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मित्रों इसी के साथ ही आज का ये डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।